ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक फैक्ट्स ऑफ डायबिटीज, अर्थात डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी क्या है, ये क्यों होता है, कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं, उसमें क्या क्या निशानियां होती है, क्या क्या लक्षण है, ये सब विषय वस्तु का हम चर्चा करेंगे। ठीक है। वास्तव में डायबिटीज कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है, हजारों साल की पुरानी बीमारी है। परंतु ये बीमारी पहले कभी कोई लाखों में कोई बिरला किसी को होता था, आज तो ऐसी स्थिति आ गई है घर घर में जिसको देखो डायबिटीज, सर्दी जुखाम की तरह आप जिसको देखो डायबिटीज, हर तीसरा चौथा बंदा सिटीज में देखो तो उनको डायबिटीज है। तो वास्तव में वर्तमान समय ये सोचने की बात है, इस बीमारी के बारे में सभी को सचेतनता और सभी को जागरूकता चाहिए। इसलिए चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये डायबिटीज क्या चीज है। आज जिधर जाओ, आज कहीं भी चलते फिरते रास्ते में, बस में, इस बीमारी के बारे में चर्चा तो हम सुनते हैं, परंतु इस बीमारी के बारे में लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है। लोग डायबिटीज, मधुमेह कहते तो हैं, परंतु कईयों के मन में प्रश्न भी उठता है कि यह बीमारी है, क्यों होता है, और लोगों को पूर्ण जानकारी न होने के कारण ही आज ये बीमारी की जो रूपरेखा हम देख रहे हैं, ऐसी समस्या, ऐसी स्थिति आ पहुंची है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि ये बीमारी है क्या। देखिए, डायबिटीज कोई नई बीमारी नहीं, मैं बता रहा था, इसको हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, भारतवर्ष के आयुर्वेद शास्त्र में मधुमेह के रूप में वर्णन किया गया है। हमारे मूत्र संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हैं, करीब लगभग 14 बीमारियां हैं, जिसमें मेह, प्रमेह, मधुमेह आदि आदि नाम से व्याख्यान है। तो मधुमेह एक बीमारी ऐसे है जिसमें हमारे पेशाब हनी अर्थात मधु जैसा बिल्कुल एकदम मीठा हो जाता है, जिसके लिए इसका नाम मधुमेह है। होता क्या है, वास्तव में हमारे शरीर में शुगर की मात्रा खून में बहुत बढ़ जाती है, और जिसके कारण फिर वो पेशाब में भी छलकने लगती है, और फिर पेशाब जब एकदम मीठा हो जाता है मधु जैसा, शहद जैसा, तो इसको मधुमेह की बीमारी कही जाती है। तो ये बीमारी हमारे भारतवर्ष में बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले, हमारे आयुर्वेद आचार्य जो सुश्रुत हैं, चरक हैं, इनका पूरा व्याख्यान करके गए हैं। आपको आश्चर्य होगा, उन दिनों में भी उनको पता था कि दो प्रकार के मधुमेह होते हैं, एक मोटे लोगों को होता है, एक दुबले पतले होते हैं, इसमें खान पान का क्या रोल है, एक्सरसाइज व्यायाम का क्या रोल है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ये सुश्रुत चरक जैसे बता के गए थे, और उन दिनों में कोई आज की तरह सैनिटरी सिस्टम तो था नहीं, तो लोग बाहर पेशाब करते थे, तो अगर पेशाब में चींटियां इकट्ठे हो जाते थे तो उससे पता चलता था कि फलाने व्यक्ति को डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी है। परंतु आज ऐसी स्थिति आ पहुंची है जो ये बीमारी अभी बहुत साधारण हो गया, घर घर में सबको हो रहा है, और इसके कॉम्प्लिकेशन से इतने लोग मर रहे हैं, आपको सुनने से बहुत दुख होगा। तो वास्तव में ये बीमारी की परिभाषा हमें संपूर्ण पता है क्या बीमारी है। तो ये हमारे शरीर में एक प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं चलती है, जो मेटाबॉलिज्म अंदर शरीर के अंदर होता रहता है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। वास्तव में डायबिटीज कोई सिंगल बीमारी नहीं है, इसमें बहुत कुछ चीजें गड़बड़ा जाती है अंदर। तो डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अब मल्टीपल इटियोलॉजी अर्थात बहुत सारे कारण इसके हैं, कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। कुछ भी हो, इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा लंबे समय तक बढ़ जाती है। कोई टेम्पररीली थोड़े समय के लिए शुगर की मात्रा अगर खून में बढ़ जाए तो उसको डायबिटीज नहीं कहा जाता है, इट इज क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, अर्थात लंबे समय तक अगर हमारे शरीर में शुगर की मात्रा खून में बढ़ा हुआ पाया जाता है तो उसको डायबिटीज कहा जाता है। और इसका मूल कारण है कि हमारे शरीर में जो खून की मात्रा, खून में शुगर की मात्रा वास्तव में एक लेवल में मेंटेन होकर रहता है, 70 मिलीग्राम से 140 मिलीग्राम तक ये खून में शुगर की मात्रा मेंटेन होकर रहता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे शरीर में सब कुछ नियंत्रित होने के लिए। आपको तो सचमुच वंडर लगेगा, आज तक दुनिया में ऐसे शरीर जैसा कोई मशीन नहीं है जो 100 साल तक पूरा चले, इतने सारे सिस्टम्स। देखिए हमारे हार्ट जब से पैदा हुए हैं मरते दम तक चलता रहता है, एक मिनट भी रेस्ट नहीं है, हमारे फेफड़े चलते रहते हैं, हमारे किडनी फिल्टर करते रहते हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स मशीनरी आज दुनिया में कोई भी नहीं है। हम कितना भी इसको मिमिक करें, इमिटेशन करें, ऐसे मशीन बना ही नहीं सकते हैं, ये तो कुदरत है। परंतु कहने का मतलब हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा बिल्कुल नियंत्रित होकर रहती है, इसके पीछे एक हार्मोन का जबरदस्त रोल है, उसका नाम है इंसुलिन, जो हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पैनक्रियास, जिसको अग्नाशय भी कहते हैं। उस पैनक्रियास ग्रंथि से एक प्रकार की कोशिका है जिसका नाम बीटा सेल्स कहते हैं हम, उस कोशिका से इंसुलिन एक हार्मोन क्षरण होता है और वो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को बरोबर नियंत्रण करके रखता है। परंतु किसी भी कारण से अगर शरीर में वो इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाता है या वो इंसुलिन ठीक से बरोबर काम नहीं करता है, तब हम देखते हैं कि शरीर में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। कुछ भी हो, अगर शरीर में शुगर की मात्रा लंबे समय तक बढ़ जाती है तो खून के जरिए से ये शुगर की मात्रा चारों तरफ सारे शरीर में बहुत होने के कारण एक एक ऑर्गान जैसे कि हमारे आंखें, हमारे हार्ट, हमारे किडनीज, हमारे नसें, ब्रेन, ऐसा अंग नहीं रह जाता है जिस अंग में उसका दुष्प्रभाव नहीं पहुंचता है। तो इसलिए लंबे समय तक अगर किसी के शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक समय आ पहुंचता है उसके जो ऑर्गन्स है बताया, आंखें, किडनीज, हार्ट, ये सब फेल होने लगते हैं और एक दिन फेल भी हो जाते हैं तो आदमी अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसका बहुत सारे कारण है और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अंदर हमारे जो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं वो गड़बड़ा जाती है और हमारे शरीर में इंसुलिन नामक एक हार्मोन जो अग्नाशय ग्रंथि से क्षरित होता है वो इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाता है या ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारे आंखों पर, हमारे गुर्दे पर, हमारे हार्ट पर, सब पर, ऐसे एक एक अंग पर इसका ऐसा असर होता है जो एक दिन ये सब फेल हो जाते हैं। तो देखिए कितनी एक खतरनाक बीमारी है जो एक दिन आदमी को बिल्कुल सत्यानाश कर देता है उसका। तो डायबिटीज में हमारे शरीर में, हमारे पेट के पिछले हिस्सा में, पृष्ठ भाग में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैनक्रियास, उससे ही वास्तव में ये इंसुलिन बनता है। आप देखिए इस चित्र में हमारी अन्न नली है जो भोजन खाते हैं, नीचे हमारे पेट में पाकस्थली में अन्न पहुंचता है, फिर इसके बाद क्षुद्रांत्र है, बृहदांत्र है, लेकिन पाकस्थली के पीछे है, उसके जस्ट पोस्टीरियर साइड में एक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय और इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होती है। उसमें बीटा सेल्स नामक एक कोशिका है जिस कोशिका से इंसुलिन या एक हार्मोन है जो क्षरित होता है। तो अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके अंदर यह हार्मोन क्षरण होता है और इंसुलिन फिर खून में जाके समा जाता है, और इंसुलिन और जो भी खाते हैं वो सब ब्रेक डाउन होके शुगर बन के ग्लूकोज होके वो भी खून में जाता है। तो इंसुलिन क्या काम करता है वास्तव में, ये इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को एक एक कोशिका के अंदर पहुंचाने में काम करता है। तो देखिए पेनक्रियास में बहुत सारे प्रकार के सेल्स हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। इसमें बीटा सेल नामक एक प्रकार के सेल हैं जिससे ही इंसुलिन बनता है। जैसे हम भोजन खाते हैं, आपको बताया कि ये भोजन अंदर पेट में जाके वो विखंडित होके लास्ट में ग्लूकोज व शुगर बन जाता है और वो खून में जाके घुल जाता है। जैसे ग्लूकोज खून में पहुंचता है, ऐसे ही हम खाते ही हमारे पेट में जो पाकस्थली ग्रंथि है, उस पाकस्थली के पिछले हिस्सा में जो अग्नाशय रूपी ग्रंथि है, उससे इंसुलिन तुरंत बनता है और वो इंसुलिन भी खून में आ जाता है। और ये इंसुलिन शुगर के साथ साथ इसको एक एक कोशिका में पहुंचा के हमें ऊर्जा देने के लिए मदद करता है। ग्लूकोज वास्तव में जैसे एक हमारा शरीर एक गाड़ी है, किसी भी गाड़ी में अगर मान लीजिए आप पेट्रोल नहीं डालते हैं तो गाड़ी चल सकती है, इसी प्रकार हम शरीर रूपी गाड़ी को भोजन रूपी फ्यूल जरूरत है। तो ग्लूकोज के बिना वास्तव में ये शरीर रूपी गाड़ी तो चल ना सके। हमारे ब्रेन के लिए भी चाहिए, हार्ट के लिए भी चाहिए, जो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। तो ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए ऊर्जा देता है और ये एक एक सेल के अंदर जाके ये ग्लूकोज काम करता है, परंतु सेल के अंदर वास्तव में ये ऊर्जा, ये ग्लूकोज अंदर जा नहीं पाता है। इंसुलिन सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ये ग्लूकोज को पहुंचाने में काम करता है। तो इसलिए हम इंसुलिन को वास्तव में एक चाबी के साथ भेंट करते हैं। देखिए खून की नली में, रक्त नलिका में, इसमें देखिए ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल जो रहना चाहिए। जब अगर हमारी इंसुलिन काम नहीं करता है ठीक से, ये ग्लूकोज को सारे कोशिका तक पहुंचाने में मदद नहीं कर पाता है, तो रक्त शर्करा अर्थात खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण उसको हम डायबिटीज व मधुमेह कहते हैं। तो देखिए ये इंसुलिन एक की तरह, एक चाबी की तरह काम करता है और हमारे मसल्स में, हमारी चर्बी में, सारे शरीर में एक एक कोशिका के अंदर इसको पहुंचाने में मदद करता है। अगर किसी भी कारण से इंसुलिन नहीं काम कर पाता है तो खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसलिए सारे दिन में अगर देखें, कभी भी अगर खून की मात्रा चेक किया जाए तो 70 और 140 मिलीग्राम परसेंट के अंदर ही खून में शुगर की मात्रा मेंटेन होके रहती है। अगर शुगर की मात्रा कम हो जाए तो भी हानिकारक है, आदमी बेहोश हो सकता है, अगर ज्यादा भी हो जाए तो भी नुकसानकारक है। जैसे किसी गाड़ी में अगर बिल्कुल फ्यूल कम हो जाए, रिजर्व लेवल से भी कम हो जाए, गाड़ी तो चल ना सके। इसी प्रकार अगर ओवरफ्लो हो जाए तो भी नुकसानकारक है। तो शरीर में भी ये जो ग्लूकोज रूपी फ्यूल की मात्रा को एक निर्धारित लिमिट में रखने के लिए इंसुलिन बहुत बड़ा एक कार्य निभाता है। तो इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो हर सेल के अंदर ये ग्लूकोज को पहुंचाने में काम करता है। तो देखिए जैसे इंसुलिन ये शुगर को सेल के अंदर पहुंचा रहा है, लेकिन जब किसी को डायबिटीज हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो देखिए अंदर पहुंच नहीं पा रहा है, सेल के अंदर पहुंचाने में वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है। तो इसको हम अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ।
मधुमेह क्या है? मानव शरीर की कोशिकाओं को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा शारीरिक कार्यों या सोच विचार जैसी मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक होती है। सोने में भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बच्चों को भी वयस्कों की तरह ही ऊर्जा की जरूरत होती है। कोशिकाएं अपने कामकाज के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज नामक एक पदार्थ को प्रयोग में लाती हैं। ग्लूकोज के बिना कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादित नहीं कर सकती। भोजन पच जाने के बाद ग्लूकोज में विखंडित हो जाता है। पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के साथ पाचन नाल से गुजरता है। आंत में ग्लूकोज रक्त में घुल जाता है। रक्त पूरे शरीर में संचरित होता है और घुला हुआ ग्लूकोज शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचकर शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करने में समर्थ बनाता है। ग्लूकोज अपने आप कोशिकाओं में नहीं पहुंच सकता। कोशिकाओं का बाहरी आवरण ग्लूकोज के लिए तालाबंद दरवाजे की भूमिका निभाता है और इसे भीतर प्रवेश नहीं करने देता। शरीर द्वारा उत्पन्न किया नया इंसुलिन नामक रसायन आवरण के दरवाजे खोलकर ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रविष्ट करवाकर चाबी की भूमिका निभाता है। शरीर के एक अंग का नाम है अग्नाशय। इसमें बीटा कोशिकाएं होती हैं जो कि इंसुलिन उत्पन्न करती हैं। ये इंसुलिन रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है जिसे ये शरीर की सभी कोशिकाओं में ले जाती है। रक्त में बहुत अधिक ग्लूकोज के संचार को उच्च रक्त शर्करा कहा जाता है तथा इससे मधुमेह नामक स्थिति आ सकती है। चाबियों की अनुपस्थिति से इंसुलिन निर्भर या प्रकार एक की मधुमेह हो जाती है। उदाहरण के लिए जिन रोगियों का अग्नाशय काम करना बंद कर देता है। कोशिका के दरवाजे में गड़बड़ी के कारण प्रकार दो या इंसुलिन पर निर्भर नहीं ऐसे मधुमेह का कारण बनती है। उदाहरण के लिए जिन रोगियों पर इंसुलिन का कोई असर नहीं होता, इंसुलिन के अपर्याप्त प्रवाह के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है और दीर्घकाल में प्रकार दो का मधुमेह हो सकता है।
तो आप सभी को समझ में आया कैसे इंसुलिन कार्य करता है? तो अभी हम देखेंगे वास्तव में ये डायबिटीज का कारण क्या है, क्यों होता है डायबिटीज किसी को। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, इट हैज मल्टीपल इटियोलॉजी, अर्थात इसके बहुत सारे कारण है। परंतु सभी कारण को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक है जेनेटिक, दूसरा है एनवायरमेंटल कॉजेस। अर्थात डायबिटीज इसलिए होता है कि ये एक अनुवंशिक बीमारी है। अगर हमारे पूर्वजों को, माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, कोई भी ब्लड रिलेटिव्स को अगर है, तो जिनके जरिए से हमारे अंदर ये बीमारी आके पहुंचती है, तो हमें भी होने की संभावना है। तो इसलिए इट इज ए जेनेटिक डिजॉर्डर। बाकी हमारी जीवन शैली ठीक न होने के कारण हमारे परिवेश का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो ऐसे पारिपार्श्विक अवस्था, परिवेश, हमारी जीवन शैली संबंधित कई कारण भी है जिसको हम एनवायरमेंटल कॉजेस कहते हैं। तो देखिए जेनेटिक फैक्टर्स का क्या रोल है। अगर हमारे माता और पिता किसी को भी डायबिटीज अगर है तो हमें हो जाने की संभावना है। अगर माता पिता दोनों को डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी पाया जाता है अगर माता पिता को नहीं भी है परंतु हमारे दादा दादी, नाना नानी किसी को भी है तो भी हमें होने की संभावना है। इसलिए कोई भी डिस्टेंट रिलेटिव भी हो, ब्लड रिलेटिव्स हो, उनको अगर डायबिटीज है तो जीन के जरिए से हमारे अंदर ये बीमारी पहुंचती है, हमें हो जाती है। और दूसरा इसलिए हम बताते हैं कि देखिए किसी फैमिली में अगर डायबिटीज है, दूसरे फैमिली में भी डायबिटीज है और दोनों के बच्चों को अगर शादी कराया जाए तो बच्चों को भी डायबिटीज होने की बहुत संभावना रहेगी और फिर उनके जो बच्चे होंगे उनको भी डायबिटीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे डायबिटीज फैमिली जिसकी हिस्ट्री है, दोनों हस्बैंड वाइफ, ऐसे संबंधी नहीं बनाइए। और कई ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां बिल्कुल अपने क्लोज रिलेटिव्स के बच्चों को ही पहले प्रेफरेंस दिया जाता है शादी कराने के लिए। ये तो बहुत गलत है। अगर ऐसा है तो बच्चों को सुनिश्चित डायबिटीज होने की संभावना है, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए सलाह दी जाती है। और जो परिस्थिति के कारण, परिवेश के कारण या हमारी पारिपार्श्विक अवस्था के कारण या हमारे जीवन शैली संबंधित कारण जो है वो है एनवायरमेंटल कॉजेस, वो है जैसे ओबेसिटी। अगर कोई मोटा हो जाता है तो उसको डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोटापा अर्थात जो चर्बी है हमारे शरीर में जो जम जाती है वो हमें हमारी इंसुलिन को काम करने में वो रोकती है। तो इसलिए मोटापा वास्तव में एक बीमारी है, ये डायबिटीज होने के लिए मानो एक जड़ है। तो इसलिए मोटापा नहीं होना चाहिए, हम अगर मोटापा को रोक सकते हैं तो हमें डायबिटीज नहीं भी होगी। दूसरा है ओवर ईटिंग। हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत अधिकांश लोग बहुत चावल, चपाती, ये सब अनाज की जाती जो चीजें हैं खूब खाते हैं, जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसको कहा जाता है, जिसके कारण ही वास्तव में डायबिटीज हो रही है। और लोग आजकल तो दुनिया में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड्स प्रोडक्ट्स इतने मिलते हैं, पहले जमाने में फिर भी सीजनल फ्रूट्स मिलते थे, सीजनल्स के कई प्रकार की सब्जियां ये सब मिलते थे, आजकल तो मार्केट में जब चाहो जो चाहो सब मौजूद है। लोग खाने पीने में कोई कमी नहीं करते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, इसलिए ओवर ईटिंग होने के कारण भी शुगर की मात्रा बढ़ जाने के कारण डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। साथ साथ अगर कोई स्टीरॉयड की गोली लेता है, हमारे एलोपैथी में ऐसे स्टीरॉयड की कई गोली होती है जो हम उसको रिजर्व रखते हैं बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए, परंतु कभी कभी पेशेंट्स उसके मिसयूज करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तुरंत वो गोली खाते हैं, लंबे समय तक तो गोली खाते हैं, जिसके कारण मोटे भी हो जाते हैं, उनके हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, साथ साथ शरीर में शुगर की मात्रा भी ज्यादा होने के कारण डायबिटीज हो जाता है। तो इसलिए स्टीरॉयड की गोली भी जितना हो सके अवॉइड करें। और सबसे एक मुख्य कारण है, आज दुनिया में घर घर में जिसको देखो, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको टेंशन ही टेंशन है और स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। छोटे छोटे बच्चों को देखने से तो रैम आता है, सच बताता हूं। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, आप देखना कितने थोड़े से नोटबुक, एक दो टेक्स्ट बुक होता था छोटा सा बस। आजकल के छोटे बच्चे भी इतने सारे किताब, इतने सारे नोटबुक्स हैं, एक बोरी की तरह पीठ में लाद करके सवेरे सवेरे स्कूल जाते हैं, और उसका वजन इतना ज्यादा होता है बच्चा सीधा भी खड़ा नहीं हो पाता है। जैसे आप देखे होंगे मजदूर लोग अपने पीठ में चीनी की बोरी, आलू की बोरी लाद के जब कहीं लोड कराते हैं, बेचारे कमर झोंक के कैसे चलते हैं। तो इस प्रकार आजकल के स्कूल के बच्चे भी ऐसे बोरी की तरह अपने इतने टेक्स्ट बुक से, उनके नोटबुक से देख के रहम आता है। तो छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन, बूढ़ों को भी टेंशन, जिसके पास मकान है टेंशन, जिसके पास मकान नहीं है टेंशन, जिसके पास जो बिजनेस करता है टेंशन, जो नौकरी करता है टेंशन, जो शादी किया है टेंशन, जो शादी नहीं करता है टेंशन, टेंशन ही टेंशन। और मैं टेंशन को क्या कहता हूं जानते हैं, टेन माना TEN, टेन माना 10, है ना नहीं, और सन माना बच्चा, जिसका 10 नालायक बच्चे पैदा हो जाते हैं जिसके घर में, जिस जैसी परिस्थिति होगी उसको टेंशन कहा जाता है। तो आज दुनिया में सबको टेंशन ही टेंशन है, बच्चे बूढ़े सबको, ये तनाव एक मुख्य कारण है डायबिटीज का। इसलिए कहते हैं टेंशन और स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक, तो इसलिए ये एक मुख्य कारण है। और भी कारण है, तो आज बहुत लोग ज्यादा मिठाइयां खाते रहते हैं, देखो चीनी ऐसे खाते हैं सोच भी नहीं सकते हैं। फ्रूट जूस, ऐसे तो फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन लोग फ्रूट जूस बनाएंगे उसमें और चीनी डालेंगे और उसको घोल के पियेंगे, चाय बनाएंगे ऐसे भी मीठी चाय है परंतु फिर भी उसमें 3-4 चम्मच डाल के पियेंगे। मैं एक मेरे कलीग था, मैं आपको बताऊं, आपको सुन के हैरान होगी, वो क्या करता था, ब्रेड लेता था, उसमें अच्छी तरह से मक्खन बटर लगा देता था, अच्छी तरह से इतना थिक बटर, उसके ऊपर जैम लगा देता था, उसके ऊपर और 2-3 चम्मच चीनी डाल के दोनों पीस में, एक पीस नहीं दोनों पीस में, फिर ऐसे दबा के खाता था। तो लोग मिठाइयां खाने में इतने आज ये हो गए हैं कि जिसके कारण भी ये डायबिटीज की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए कभी कभी कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ हुआ, खा लेना अलग बात है, परंतु ऐसे ही खा जाना पूरा मिठाइयां और ये मीठी चीजें, ये सब इसके कारण ही ये बीमारियां हो रही है। साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सबसे एक मुख्य कारण है। आज मशीन की जमाने में इतने सारे मशीनरी हो गए हैं, आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लैपटॉप पकड़ा है, घर में बैठे बैठे लैपटॉप ऑपरेट करके सब कुछ, बिजनेस से लेके सब कुछ वहां ही हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुर्सियां है, कुर्सियों के नीचे पहिया है, उठ के जाके कोई चीज उठाने की जरूरत नहीं, कुर्सी में बैठे बैठे घर करके जाएगा, घर करके आएगा। कहीं थोड़ा सा भी नहीं चलना है, उनको गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए। पहले जमाने में फिर भी लोग चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, कुछ नहीं तो साइकिल तो चलाते थे। आजकल साइकिल कोई बिरला मिलेगा आपको रास्ते में, बाजार में कहीं भी देखेंगे तो, जिसको देखो एकदम छोटा सा छोटा कोई कर्मचारी हो तो भी उसके पास टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। तो आदमी अभी चलना नहीं चाहता है, बिल्कुल एकदम आलसू हो चुके हैं सभी, मोटे मोटे होते जा रहे हैं, जिसके कारण ही ये बीमारियां जो जीवन शैली जनित है, ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही है। दूसरा, उम्र जितना बढ़ता जाता है तो भी ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस ज्यादा होने की संभावना है। तो हमारे भारतवर्ष में बहुत एक परिवर्तन आप देखेंगे, विदेश में अभी भी 60 साल के बाद डायबिटीज पाया जाता है, परंतु हमारे भारत का मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि यहां 40 और 60 साल के बीच में ही अधिकांश लोगों को डायबिटीज हो रहा है। और आजकल तो 20 साल 18 साल 20 साल की उम्र से भी डायबिटीज होना शुरू हो गया है, टाइप 2 डायबिटीज। तो सोचिए कितनी बड़ी एक समस्या है। तो ये समय बदलता जा रहा है, और भी एक मुख्य कारण है, हमारे भारतवर्ष में आज भी हम 20-30 जहर हैं जिसको हम आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो विदेश में एडवांस्ड कंट्रीज में उसको कब से बैन कर दिया गया है। अभी भी हम चूहे को मारने वाली जो दवाई है, कीड़ों को मारने वाली जो पेस्टिसाइड्स है, कई प्रकार के केमिकल्स और दवाई हैं ऐसे जो हम आज तक भी प्रयोग करते हैं। जिस दवाई को छिड़कने से आप देखिए कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, रोज हम हमारे सब्जियों में वो केमिकल्स को छिड़कते हैं और उसको लाके हम खाते हैं पका के। कितना भी उसको धुलाई करो, कितना भी उसको उबालो, कुछ करो, जरा जरा भी अगर वो पॉइजन हमारे शरीर में पहुंचता है क्या करेगा सोचिए। जिस दवाई से कीड़े मर जाते हैं वो अगर हमारे स्लो पॉइजन की तरह थोड़ा थोड़ा भी हमारे शरीर में आएगा कितना बड़ा नुकसान करेगा सोचिए। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं। आज हम अपने पारिपार्श्विक जो देखते हैं एनवायरमेंट है, हमारे जहां रहते हैं अड़ोस पड़ोस स्थान को कितना गंदा करके रखते हैं। सारे घर लोग साफ करेंगे, सब भी जो भी कचड़ा निकलेगा सब बगल में सब डालेंगे। ये सब भी एक कारण है जो ये सब बीमारियां फैल रही है। तो इसलिए ये अनेक कारण है, डायबिटीज का कोई एक कारण नहीं है। परंतु ये एक फैक्ट है कि हम सभी भारतीय होने के कारण हमारे जीन में ये बीमारी ऑलरेडी है। जैसे एक उदाहरण देने से क्लियर होगा, देखिए किसी के पिस्तल में ऑलरेडी बुलेट्स है, लेकिन जरा सा भी वो लापरवाही किया, ज्ञात सार से हो या अज्ञात सार में भी, उसका अगर हाथ ट्रिगर में दब गया, उंगली दब गई, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बोलिए, फायर हो जाएगा ना, नहीं, शूट हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जीन में ऑलरेडी, हम भारतीय होने के कारण, इंडियन होने के कारण हमारे जीन में ऑलरेडी डायबिटीज की बीमारी है। जब हम अलबेले रहते हैं, लापरवाही करते हैं, हमारे खान पान भोजन ठीक नहीं है, हम आलसू हो जाते हैं, टेंशन करते हैं, तो ये बीमारी हमें हो ही जाती है। परंतु अगर मान लीजिए आपके पिस्तल में ऑलरेडी बुलेट है लेकिन आप पूरा ध्यान दिया, कभी भी ट्रिगर को दबाया नहीं, तो बुलेट होते हुए भी आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो फायर होगा ही नहीं। इसी प्रकार हम अगर ध्यान दें, हमारे माता पिता को भले डायबिटीज है लेकिन अगर पूर्ण हम ध्यान दिया अपने ऊपर और हम खान पान का परहेज रखा, एक्टिव रहे, मोटे नहीं हुए, मिठाइयां जितना कम हो सके खाए, तो हमें डायबिटीज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ये बीमारी से हम बच जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, दोस्तों, देखो आप इंडियन होने के कारण हम कभी कभी हम बहाना करते हैं, क्या करें डॉक्टर साहब, मेरे माता पिता को है ना, इसलिए मुझे डायबिटीज हो गया। लेकिन खुद इतने मोटे हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, वो अपने ऊपर जो अपनी कमी है वो कभी नहीं बताएंगे, नहीं माता पिता को है ना। माता पिता को होते हुए भी अगर हमारी जीवन शैली को हम ठीक करेंगे तो कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। मोटापा बहुत बड़ा एक शत्रु है डायबिटीज के लिए। जो मोटे हो जाते हैं उनके इंसुलिन ठीक से बन नहीं पाते हैं, बनते भी तो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। कोई मोटा व्यक्ति अगर अपना खान पान का पूरा ध्यान दिया, एक्सरसाइज जबरदस्त किया अच्छी तरह से, अगर वजन 10 किलो भी घटा दिया ना, उसको कोई दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। अगर दवाई लेता भी है तो दवाई बंद हो जाता है। तो इसलिए देखिए मोटापा बहुत बड़ा एक जानी दुश्मन है डायबिटीज मरीज के लिए। तो मेरे भाई बहनों, कभी मोटे नहीं होना। हमारे भारतवर्ष में वास्तव में कोई मोटे थे ही नहीं। हमारे पूर्वजों को देखो, लक्ष्मी नारायण को देखो, राम सीता को देखो, और किसी को भी देखो, हमारी देवी देवताओं को, कितना सुंदर तन। उनकी मूर्तियों को देखे, उनके चित्रों को देख के दिल गदगद हो जाता है, वाह, एकदम दिल खुश हो जाता है। और आज हमारे भारतवर्ष में क्या दुर्दशा है, देखो कितने परसेंट लोग मोटे होते जा रहे हैं, 50% से तो ज्यादा हो चुके हैं। और थोड़े समय में ऐसे एक समय आएगा जो सारे विश्व में नंबर वन, इसमें मोटापा में भी भारत नंबर वन प्राइज लेने वाला है। अभी डायबिटीज में हम नंबर वन तो है ही, ब्लड प्रेशर में नंबर वन है ही, हार्ट अटैक में भी नंबर वन है ही, तो मोटापा में भी अभी अमेरिका में बहुत मोटे मोटे लोग हैं, 60% लोग हैं। उनके देश की सबसे बड़ी समस्या यही है अभी मोटापा। तो भारत, हम उनको अनुकरण करते हुए एक दिन अमेरिका के आगे चले जाएंगे ऐसा लगता है। जाएंगे, चले, सभी सब चले जाएंगे ना। जिस प्रकार की जीवन शैली हमारी है, जिस प्रकार का खान पान है, वो होना 100% सुनिश्चित है। लेकिन मेरे भाई बहनों, अगर ध्यान देंगे, मोटे नहीं होंगे, तो हम कई प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। अभी हम देखते हैं कितने प्रकार के डायबिटीज है। वास्तव में डायबिटीज तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन आप सभी को इतनी बातें याद भी नहीं रहेगी, मैं सार रूप में आपको सुना देता हूं। टाइप वन अर्थात प्रकार एक की डायबिटीज, ये एक प्रकार की डायबिटीज है जो बहुत कम परसेंट लोगों को होते हैं, 4-5%, 10% के अंदर, अक्सर करके ये छोटे बच्चों को होते हैं। दूसरा है टाइप टू, जो कि बहुत कॉमन है, सभी को जो हो रहा है अभी दुनिया में देख रहे हैं हम, भारत में खास, ये मोटापा के कारण जो ज्यादा होता है, हमारे खान पान के कारण, हमारी जीवन शैली ठीक ना होने के कारण ये टाइप टू डायबिटीज है। अक्सर करके 90-95% लोगों को ये डायबिटीज होती है। तीसरा होता है गर्भावस्था में महिलाओं को, क्योंकि गर्भावस्था एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो गर्भावस्था में भी कई महिलाओं को डायबिटीज हो जाती है, लेकिन कोई चेक करता नहीं है। ऐसे ही कितने लोग होम डिलीवरी होती है, कभी भी जाके हॉस्पिटल में इतनी जागरूकता नहीं है, सचेतन नहीं है। पहले तो बहुत ज्यादा, जिसके कारण बहुत बच्चे मर जाते थे, कभी कभी तो माताएं भी मर जाती थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो जागरूकता आई है। सरकार की तरफ से बहुत प्रकार की फैसिलिटी आजकल उपलब्ध है, इसलिए लोग जाके हॉस्पिटल में डिलीवरी तो करा रहे हैं, लेकिन एंटीनाटल चेकअप करा के जैसे ही कोई गर्भावस्था में एंट्री करता है तो उसका ब्लड शुगर जांच करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि गर्भावस्था में अगर किसी महिला को डायबिटीज हो जाए तो ना सिर्फ उनके लिए खतरा है, उनके लिए जान की भी खतरा है, लेकिन उसके बच्चा जो पैदा होगा वो बच्चा को भी बहुत जल्दी से जल्दी डायबिटीज होने वाला है। होता क्या है, किसी को अगर गर्भावस्था में डायबिटीज है, उसके शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होने के कारण वो बच्चा तक भी वो शुगर पहुंच जाता है, और बच्चा को जब शुगर ज्यादा हो जाता है, वो बच्चा मां के पेट में बहुत मोटा होने लगता है, और जब डिलीवरी का समय आता है, वो बच्चा को नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए फिर सीजरियन सेक्शन भी कराया जाता है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, और बच्चा अक्सर करके 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो से ऊपर ऐसे मोटा बच्चा पैदा होता है। और होता क्या है जानते हैं, कि घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, परिवार वाले देखते हैं, अरे इतना बढ़िया मोटू बच्चा पैदा हुआ है, हमारे घर में तो शायद ये भीम पैदा हुआ है। वो भीम नहीं हुआ है, अभी तो उसको थोड़े दिन में ही डायबिटीज होने वाला है। तो इसलिए देखिए, बहुत खतरा है, दो जेनरेशंस के लिए हम ये खतरा है। तो ऐसे गर्भवती महिलाओं को भी डायबिटीज का चेक करना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में खास हमारे 15-20% महिलाओं को डायबिटीज पाया गया है। विदेश में फिर भी कम है, हमारे देश में बहुत ज्यादा है। इसलिए माताओं को गर्भावस्था में जो डायबिटीज हो जाती है उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। चौथा है, और कई कारण है, जैसे कोई किसी का पेनक्रियास में इन्फेक्शन हो गया, पेनक्रेटाइटिस हो गया, या उसमें पथरी की बीमारी हो गई, तो उस समय उसको डायबिटीज होने की संभावना है। कभी कभी ऑपरेशन गॉलस्टोन्स जाके फंस जाते हैं पेनक्रेटिस पेनक्रेटिक डॉक्ट में, तो उसके कारण जब ऑपरेशन कराया जाता है उसके बाद भी गॉल ब्लैडर गॉलस्टोन पेनक्रेटाइटिस होने के कारण भी उसको डायबिटीज होने की संभावना रह जाती है। कई कारण है, ऐसे कई हार्मोनल डिजॉर्डर्स है, जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जिसके कारण होते हैं, लेकिन ये बहुत बिरला है। ये सब जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हजारों में लाखों में एक किसी को होता है। इस प्रकार देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज में आपको बता रहा था, लगभग 5-10% इसमें छोटे बच्चों को ही होता है, टीन एज में ही ज्यादा होता है, 30 साल से पहले उम्र में ही होता है। दूसरा जो टाइप 2 है, ये बड़ों को 30 साल के बाद ही उम्र में होता है, और जो बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, टेंशन रहते हैं, ये धीरे धीरे होता है। टाइप 1 डायबिटीज तो सडन होता है, पहले जमाने में टाइप 1 डायबिटीज जिसको होता था वो मर ही जाता था। तीसरा बताया गेस्टेशनल डायबिटीज, जो गर्भावस्था में महिलाओं को ये डायबिटीज होता है। और चौथा जो है आपको बताया स्पेसिफिक टाइप डायबिटीज, ये तो कई प्रकार के हैं, जिसमें बीटा सेल्स ठीक से काम नहीं करता है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, या कोई प्रकार के पेनक्रियास में बीमारी हो जाती है, जैसे पथरी बताया, इन्फेक्शन बताया। इस प्रकार एंडोक्राइन डिजॉर्डर्स है, एक्रोमेगाली है, कुशिंग सिंड्रोम है, इस प्रकार कई प्रकार की दवाइयां हैं, जैसे आपको स्टीरॉयड बताया, और कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे वायरस इन्फेक्शन, रूबेला आदि आदि, और कई प्रकार के ऐसे इम्यून मीडिएटेड डिजॉर्डर्स हैं, सिंड्रोम्स हैं, ये बहुत रेयर है, और कई प्रकार के जेनेटिक सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब बहुत रेयर है, ये सब आप नहीं समझ सकते हैं, आपके समझने की सीमा से बाहर है, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब देखते हैं कि किसको डायबिटीज होता है। जो मोटे होते हैं, जो बहुत आलसू होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, जो बहुत ओवरवर्क्ड होते हैं, इतना काम के बेचारे बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, जिनके फैमिली में किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री है, जिनका खान पान का बिल्कुल परहेज नहीं है, और बहुत इरिटेटिंग पर्सनैलिटी, इरिटेबल पर्सनैलिटी, टाइप ए पर्सनैलिटी कहते हैं, बहुत गुस्से वाले स्वभाव के हैं, तो ऐसे लोगों को भी डायबिटीज हो जाता है। तो इसलिए हमारी पर्सनैलिटी कई प्रकार की बीमारी को ले आती है। जो व्यक्ति बहुत नम्र है, मधुर है, शांत है, गंभीर है, उसके जीवन सदा ही एक स्थिति में रहता है, कोई बीमारी नहीं होगी। जो सदा खुश रहता है, मस्त रहता है, संतुष्ट रहता है, उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन जो सब कुछ गड़बड़ाता है अपने जीवन का, अपने जीवन शैली को ठीक नहीं रखता है, उसको ही सारी बीमारियां, मधुमेह जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी, हार्ट अटैक जैसी सारी बीमारियां होती है। ये क्या निशानी है, बता सकते हैं क्या निशानी है? हमारे जहां जहां स्किन फोल्ड्स हैं वहां चमड़ी बहुत थिक हो जाती है, थिक और वेलवेटी हो जाती है, काले काले हो जाते हैं, इसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एकांथोसिस निग्रिकांस। ये डायबिटीज की एक निशानी है। अगर कोई व्यक्ति आप ऐसे देखते हैं, उसके गर्दन में ऐसे काले काले एकदम पूरा थिक स्किन है, तो समझ जाइए इसको डेफिनेटली इसका शुगर ज्यादा होगा। आप उनको राय देना, आप शुगर कृपया चेक करो, देखना उसका शुगर जरूर हाई होगा। डायबिटीज मरीज को कई प्रकार की सिम्टम्स होते हैं जो खुद उनको अनुभव होता है। ये तो निशानी हम देख के जान सकते हैं, लेकिन पेशेंट को क्या तकलीफ होता है? वास्तव में डायबिटीज किसी को हो जाता है तो बहुत भूख लगने की संभावना है, बहुत प्यास लगती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, पेशाब इतना बाद एक घंटे में ऑलमोस्ट जाना पड़ता है, बहुत थकान लगता है, क्योंकि जो भी हम कुछ खा रहे हैं वो शक्ति के रूप में, वो ऊर्जा के रूप में वो प्रयोग नहीं हो पा रहा है शरीर में, वो पिशाब में वो शुगर सारा बह जाता है, जिसके कारण शरीर कमजोर होने के कारण एकदम थकावट अनुभव करता है। अगर कोई किसी का वजन एक दो महीने में 8-10 किलो कम हो गया, 6-7 किलो भी कम हो गया, तो आप समझ लीजिए इसको डायबिटीज की बीमारी है। हो सकता है दूसरे भी बीमारी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, लेकिन अक्सर करके डायबिटीज में ऐसे 2-4 महीने में ही 8-10 किलो वजन कम हो गया, घट गया, तो समझ जाइए कि इसको डायबिटीज है। कई लोग पूछते हैं क्यों घटता है, क्योंकि जो भी कुछ खा रहे हैं वो सारे पूरा नलके की तरह दूसरे तरफ से, एक तरफ से खा रहे हैं, दूसरे तरफ से बह जा रहा है पेशाब में, तो कहां से, शरीर में तो लगता नहीं है कुछ भी, तो कमजोर हो जाते हैं। परंतु मेरे दोस्तों, ये जो निशानियां बताया ये सब 99% लोगों को होता नहीं है कुछ भी, इसलिए डायबिटीज को हम एक साइलेंट बीमारी कहते हैं, एक खामोश जानलेवा बीमारी कहते हैं, समझे। मेजोरिटी लोगों को कुछ होता नहीं है, इसलिए इसका डायग्नोसिस हम सिर्फ उसको पूछ के कि आपको क्या होता है, क्योंकि कोई बताता नहीं है कुछ होता है, इसलिए हम जब उसकी खून की जांच करते हैं लेबोरेटरी में तब पता चलता है इसको डायबिटीज है। मेजोरिटी लोग तो कभी आके ऐसे टेस्ट नहीं कराते हैं, किसी का किसी कारण बनता है, किसी को सर्जरी करानी है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है, जब आके वो खून का जांच करता है तब हमें पता चलता है यार 300 शुगर 400 शुगर डायबिटीज पता चलता है। अगर किसी का स्क्रीनिंग किया जाए, ऐसे ही टेस्ट किया जाए, तो पता चलेगा कि उसको डायबिटीज है। तो ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है किसी को डायबिटीज है। तो टाइप 1 डायबिटीज बताया कि ये अक्सर करके छोटी बच्चियों को ही टीनेज में होता है, इसमें फैमिली हिस्ट्री नहीं भी हो सकता है, माता पिता को नहीं होते हुए भी ये डायबिटीज होती है, सडन होता है, और इसमें बहुत प्यास लगना, भूख लगना, बार बार टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना, ये सब निशानियां होती है, ऑलमोस्ट सबको होती है, इसलिए ये बीमारी सहज पकड़ में आती है। और कोई भी ऐसे छोटा बच्चा बार बहुत खा रहा है, बहुत प्यास लग रहा है, पानी बार बार पी रहा है, बार बार पेशाब कर रहा है, वजन घट गया है, समझ जाइए इसको डायबिटीज होगा, तुरंत उसका जांच कराइए, इलाज कराइए, नहीं तो जान का खतरा है। इस प्रकार का मरीज को इंसुलिन ही एक ही मात्र दवाई है, इंसुलिन नहीं देने से ये मर ही जाते हैं। जब इंसुलिन नहीं तैयार, आज से 90 साल पहले जब इंसुलिन नहीं बना था, डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो टाइप 1 डायबिटीज जिसको भी होता था वो मर ही जाते थे। और अक्सर करके टाइप 1 डायबिटीज किसी न किसी इन्फेक्शन से होता है, वायरस इन्फेक्शन से, यूजुअली हमारे जो बीटा सेल्स है अग्नाशय में है वो नष्ट हो जाते हैं, तो इंसुलिन जरा भी नहीं बन पाता है, तो ऐसे मरीजों को फिर बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ता है। माउंट आबू एक छोटा प्लेस है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास कम से कम 25 ऐसे छोटे बच्चियां हैं, बच्चे हैं जिनको रोज इंसुलिन लगाना पड़ता है, टाइप 1 डायबिटीज के हैं। दूसरे प्रकार के जो मरीज हैं, जो बहुत कॉमन है, साधारण है, वो टाइप 2। चित्र देख के आपको भी हंसी आती होगी, जो बहुत मोटे होते हैं, जो बहुत खाते हैं, बहुत मिठाइयां खाते हैं, बिल्कुल आलसू हैं, ज्यादा समय टीवी कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, कुछ खेलकूद नहीं, खान पान का कोई परहेज नहीं, दुनिया भर के टेंशन अपने सिर पे लाद के रखे हैं, ऐसे लोगों को होता है। लेकिन ये बीमारी अपने फैमिली हिस्ट्री अगर है तो होने की बहुत संभावना है, और इस बीमारी धीरे 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 होती है। टाइप 2 डायबिटीज सडन नहीं होता है, और इसमें शुरुआत में हम गोली खा के भी, एक्सरसाइज करके, खान पान का परहेज करके इसको इलाज कर सकते हैं, इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। परंतु कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद इंसुलिन उनके लिए भी जरूरत होता है। तो देखिए, ये बीमारी टाइप 2 डायबिटीज ये बहुत कॉमन है, मेजोरिटी आज दुनिया में सबको टाइप 2 डायबिटीज ही ज्यादा है, ये फैल रही है। तो कुछ भी हो जाए, हम डायबिटीज को कैसे, इसका डायग्नोसिस करें, कैसे पता चले, निदान कैसे करें, मैं बताया कि इसको खून की जांच करने से ही पता चलेगा। कई लोग ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी ग्लूकोमीटर सही नहीं होता है, उसका एक्यूरेट डायग्नोसिस, किसी का शुगर बहुत ज्यादा है, ग्लूकोमीटर में ज्यादा आता है, तो ठीक ही बात है, पकड़ में आ जाएगा, लेकिन जस्ट बॉर्डर लाइन है तो कभी कभी ग्लूकोमीटर धोखा दे सकता है, कम दिखाया, ज्यादा दिखाया, सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि खाली पेट सवेरे सवेरे लेबोरेटरी में अपने नसों से खून निकाल के जांच किया जाए तो पता चलेगा। अगर सवेरे सवेरे फास्टिंग शुगर किसी का 125 से ज्यादा है, 126 एंड अबोव, तो हम उसको वास्तव में डायबिटीज कहते हैं। फास्टिंग किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए, देखना बहुत भिन्न भिन्न जवाब आएगा। कई लोग तो सवेरे सवेरे आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा खून जांच करना है, मैं कहता हूं फास्टिंग हो, कहते हाँ जी हाँ जी। मैं फिर पूछता हूं कभी चाय सवेरे तो नहीं पिया, डॉक्टर साहब थोड़ी सी चाय थोड़ी सी पी ली हूं। तो वो थोड़ी सी चाय फास्टिंग में नहीं आता है क्या? वास्तव में फास्टिंग माना फास्टिंग, नहीं पीना है, कुछ भी नहीं खाना है, नो कैलोरी इनटेक फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। 8 घंटे से 14 घंटे के बीच में अगर हम खून का जांच करते हैं खाली पेट, तो उसको फास्टिंग कहा जाता है। पानी पी सकता है व्यक्ति, लेकिन 14 घंटा से ज्यादा हो गया तो उसको फास्टिंग नहीं, उसको तो स्टार्वेशन कहा जाता है। फिर बॉडी के अंदर कई प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती है जो शुगर की मात्रा ठीक नहीं मिल सकता है। तो इसलिए फास्टिंग शुगर 125 से ऊपर आया, और हम हर एक पेशेंट को 75 ग्राम का एनहाइड्रस ग्लूकोज, ये अलग आता है, 75 ग्राम का एनहाइड्रस ग्लूकोज एक ग्लास पानी में घोल के फास्टिंग में सवेरे सवेरे पिला देते हैं। 2 घंटे तक कोई मेहनत करना नहीं है, बैठना है चुपचाप, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, भागम दौड़ी नहीं करना है। 2 घंटे में फिर से जब जांच करते हैं, देखते हैं कितना शुगर की मात्रा है। अगर 200 से ज्यादा पाया जाता है तो हम कहते हैं डायबिटीज है। और इस प्रकार कभी भी हमारे खान पान से कोई रिलेशन नहीं, कभी भी खून लिया जाए, चेक किया जाए, अगर 200 से ज्यादा मिलता है, साथ साथ ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, ये सारी निशानियां हैं जिसको हम पॉली सिम्टम्स कहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आपको डायबिटीज हो गया। अगर ये तीन प्रकार के जो टेस्ट बता रहे थे करते थे, लेकिन आजकल और एक टेस्ट करते हैं जिसको हम 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट कहते हैं, जिसको HbA1c टेस्ट। क्या बताया? HbA1c। अगर सारा याद नहीं रहता है तो A1c याद रखिए, A1c टेस्ट, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं, A1c टेस्ट करते हैं। वो अगर 7% से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है। नॉर्मल एक व्यक्ति का 5.5% होता है, 5.5 टू 6.5 तक हम बॉर्डरलाइन कहते हैं। 6.5% से ज्यादा हो गया तो हम कहते हैं भाई डायबिटीज है। लेकिन ये सब टेस्ट एक बार कर दिया तो अक्सर करके लोग इससे संतुष्ट नहीं होते हैं, कहते हैं कि मेरा तो कभी नहीं, मेरा शुगर हमारे खानदान में नहीं, कुछ नहीं, मेरे को शुगर अभी लास्ट ईयर किया था, नहीं था, मुझे हो ही नहीं सकता, आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट गलत है। तो हम कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आपको फिर कुछ दिन के बाद फिर करिए, दूसरे लेबोरेटरी से कराइए। अगर ऐसे 2-3 बार टेस्ट करा दिया, अगर शुगर हाई मिलता है तो डायबिटीज सुनिश्चित है, इसका डायग्नोसिस कन्फर्म्ड है। तो देखिए, मुख्य रूप में 2 प्रकार के डायबिटीज हम देखते हैं। टाइप 1 छोटे बच्चों को होता है, 5-10% ही है। टाइप 2 डायबिटीज आज ज्यादा फैला हुआ है, इसके बारे में सबको जागरूकता चाहिए। और 5 से 15 साल के बच्चों को ही टाइप 1 ज्यादा होता है, टाइप 2 30 साल के बाद होता है। और छोटी बच्चियों को ही वास्तव में फीमेल सेक्स में टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा है, टाइप 2 तो कोई सेक्स डिफरेंस नहीं है। इस प्रकार जो बहुत दुबले पतले होते हैं उनको शुगर बहुत ज्यादा है, वो टाइप 1 समझ लीजिए। कोई बहुत मोटा है उसको शुगर हुआ है, वो टाइप 2 ही है। इस प्रकार सारे साल में कुछ सीजन होते हैं जिस सीजन में टाइप 1 ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन टाइप 2 का कोई सीजन का वेरिएशन नहीं है। और टाइप 1 डायबिटीज सडन होता है, टाइप 2 डायबिटीज धीरे 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 10-12 साल तक बॉर्डरलाइन रहता है, बाद में डायबिटीज होता है। सिम्टम्स में पॉली सिम्टम्स टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादा भूख लगना, प्यास लगना, ये सब बहुत कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज में बिरला किसी को होता है। और टाइप 1 डायबिटीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, किटोएसिडोसिस हो जाता है, अनकंट्रोल्ड होके जान का खतरा रहता है, आईसीयू में एडमिट करके ठीक करना पड़ता है। टाइप 2 में ये नहीं होता है। और इस प्रकार कॉम्प्लिकेशंस टाइप 1 डायबिटीज में बहुत अचानक नहीं हो जाता है, जिस दिन पता चला किसी को टाइप 1 हुआ, कम से कम 5 साल के बाद ही कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में शुगर क्योंकि बहुत लंबे समय से बढ़ा हुआ है शरीर में, बॉर्डरलाइन में भी, तो जिस दिन पता चला किसी को डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, तो उस समय उसके आंखों पर, उसके हार्ट पर, उसके नसों पर कहीं भी कुछ भी असर शुरू हुआ होगा, चेक करने से पता चलता है। इस प्रकार इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज के लिए जीने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज के लिए जीवदान है, अमृत है, वरदान है, जीवन है। उसके बिना टाइप 1 डायबिटीज मरीज मर ही जाते हैं। लेकिन टाइप 2 में शुरुआत में इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, बाद में ऐसी एक स्थिति आती है जब कोई दवाइयां जब नहीं काम करती है, इंसुलिन हम लगाते हैं। आज सारे विश्व में जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं, हम डायबिटीज को हमेशा एक बर्फ का पहाड़ के साथ भेंट करते हैं। जैसे बर्फ का पहाड़ पानी में, समुन्द्र में तैरता रहता है तो कितना थोड़ा सा हिस्सा ही ऊपर दिखता है, थोड़ा सा हिस्सा, बाकी मेजोरिटी तो पानी के अंदर डूबा रहता है। इसी प्रकार आज समग्र विश्व में और हमारे भारतवर्ष में खास बहुत थोड़े लोगों को पता है कि उनको डायबिटीज है, मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं है, वो अंधेरे में है, जब टेस्ट करेंगे पता चलेगा। लेकिन इतने करोड़ों लोगों को कौन टेस्ट करेगा पकड़ पकड़ के, जो पता चले किसको डायबिटीज है किसको नहीं है। डायबिटीज बताया टाइप 2 डायबिटीज जो बहुत कॉमन है, जिसके बारे में हम मेजोरिटी चर्चा करेंगे। पहले एक बॉर्डरलाइन स्टेज में होता है, जिस समय हम किसी को शुगर पिला के टेस्ट करें तो पता चलेगा, नॉर्मल ऐसे ब्रेड खाया, कुछ खाया, मिक्स कुछ खा के आया तो उससे नहीं पता चलेगा। कुछ साल तक शुगर पीने के बाद ही डिफेक्ट पता चलता है, हाई होता है, फिर धीरे धीरे ऐसा समय आता है कुछ भी खाओ शुगर हाई दिखाएगा, फिर बाद में जाके हम जब 200-300 हो जाता है तो टू लेट, 10-12 साल ऑलरेडी लेट हो गया है। तो बॉर्डरलाइन स्टेज में किसी को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉर्डरलाइन स्टेज से हम नॉर्मल कर सकते हैं। एक बार बॉर्डरलाइन क्रॉस कर गया तो फिर सारा जीवन भर डायबिटीज है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन हर साल फिर ये हमारे बीटा सेल्स डिटोरेट होते जाते 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 ऐसा एक समय आता है जब बीटा सेल्स से इंसुलिन जरा भी नहीं बनता है, तो उस समय फिर टाइप 2 डायबिटीज भी क्यों ना हो, उनको इंसुलिन देना ही पड़ता है। तो देखिए प्री डायबिटीज स्टेज में जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा तो बॉर्डरलाइन है, डॉक्टर साहब कहते हैं बॉर्डरलाइन, लेकिन गुलाब जामुन नहीं छोड़ते हैं, रसगुल्ला नहीं छोड़ते हैं, मिठाइयां नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, फिर एक दिन बॉर्डरलाइन पार होके छक्का, तो सारा जीवन भर फिर डायबिटीज के शिकार। तो इसलिए देखिए पहले हमें खून की जांच करने की आवश्यकता है। अगर हमारे फास्टिंग शुगर 100 से नीचे है तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं, अगर 125 से ऊपर है तो डायबिटीज मानते हैं। तो अगर किसी का 100 और 125 के बीच में है तो क्या कहेंगे, उसको ही बॉर्डरलाइन शुगर कहते हैं, इम्पेयर्ड फास्टिंग ब्लड शुगर कहा जाता है। इस प्रकार किसी को ग्लूकोज पिलाने के बाद एक ग्लास पानी में 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज घोल के पिला दिया, दो घंटे में अगर टेस्ट करते हैं, जिसको ओजीटी टेस्ट कहते हैं, ओवरऑल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओजीटीटी, अगर वो दो घंटे के बाद जब टेस्ट किया 140 के अंदर मिला तो नॉर्मल है, 200 के ऊपर चला गया तो क्या कहेंगे, 200 के ऊपर चला गया तो उसको डायबिटी कहेंगे। लेकिन 140 और 200 के बीच में पाया जाता है तो उसको हम बॉर्डरलाइन कहते हैं, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, आईजीटी कहते हैं। कभी कभी दोनों फास्टिंग में भी ज्यादा तो ग्लूकोज पिलाने की भी ज्यादा होता है, तो हम इसको कंबाइंड ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं। जिसका दोनों गड़बड़ा हुआ है उसको बहुत जल्दी डायबिटीज होने वाला है। मेजोरिटी लोगों का खाली पेट ज्यादा नहीं होता है, खाने के बाद ही ज्यादा होता है, तो इसलिए दोनों टेस्ट करना आवश्यक है। अगर कोई एक गड़बड़ाया है तो उसको नॉर्मल किया जा सकता है, उसको शुगर होने की संभावना कम है। परंतु अगर दोनों ज्यादा है, फास्टिंग शुगर भी ज्यादा है, ग्लूकोज पीने के बाद भी ज्यादा है, तो उसको तो बहुत जल्दी डायबिटीज होने वाला है। तो इस ग्राफ से आप समझ जाएंगे कि फास्टिंग शुगर 100 से कम नॉर्मल, 125 से ज्यादा डायबिटिक, 100 और 125 के बीच में है बॉर्डरलाइन। इस प्रकार ग्लूकोज पी के 140 से कम है तो नॉर्मल, 200 से ज्यादा है तो डायबिटिक, 140 और 200 के बीच में है तो बॉर्डरलाइन। तो देखिए आज हमारे भारतवर्ष में एक किसी को डायबिटीज हम डिटेक्ट करते हैं तो चार ऐसे अनडिटेक्टेड रहते हैं। कितनी बड़ी समस्या है। इसलिए भारतवर्ष में मोर देन 50% 66% से भी ज्यादा बताते हैं कि अनडायग्नोज डायबिटिक पेशेंट है। मीठे बच्चे घूम रहे हैं सब, उनको पकड़ के चेक करने से पता चलेगा इनको डायबिटीज ऑलरेडी है, लेकिन जिसको जब तक कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, लोगों को पता नहीं चलता है, तब तक अंदर ही अंदर उनका शुगर सत्यानाश कर देता है। तो इसलिए टेस्ट किसका करना चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा। हमारे भारतवर्ष में जिसके घर में फैमिली हिस्ट्री है, माता पिता को है, तो ऐसे बच्चों को टेस्ट करना चाहिए नियमित रूप में। और किसी के क्लोज रिलेशंस भी डायबिटिक है तो उसको भी चेक करना चाहिए, जो मोटे हैं उनको चेक करना चाहिए, और जो 30 साल से ऊपर है हमारे भारतवर्ष में, 30 साल से आयु जिसका ऊपर है, साल में एक बार कम से कम खाली पेट और एनहाइड्रस ग्लूकोज पी के 2 घंटे में ओजीटीटी जो कहते हैं वो टेस्ट करा ही लेना चाहिए। उससे बॉर्डरलाइन स्टेज में अगर पता चल गया तो हम नॉर्मल कर सकते हैं। और किसी के फैमिली में हिस्ट्री है तो उसको तो मैं कहूंगा 25-30 साल से ही चेक कर लेना चाहिए। और किसी को बार बार बीमार पड़ रहा है, घाव हो रहे हैं, फोड़े हो रहे हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं, तो उसको भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज साथ साथ होता ही है। तो अभी मैं अगर आपको पूछता हूं डायबिटीज क्या चीज है, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे डायबिटीज क्या है, क्या कहेंगे बताइए, डायबिटीज क्या चीज है? आप कहेंगे डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है, जिसमें खून में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाने के कारण पेशाब में भी छलकने लगता है, तो पेशाब भी हमारा शहद जैसा मीठा हो जाता है, तो उसको डायबिटीज कहा जाता है। ये कहेंगे ना, ठीक ही बताया। परंतु मुझे अगर कोई पूछता है तो मैं कहता हूं डायबिटीज इज ए टेररिस्ट, एक आतंकवादी है। जैसे आतंकवादी का काम क्या है, आतंकवादी कहीं अगर किसी देश में घुस गया तो बॉम्बार्डमेंट करता है, कहीं ना कहीं बम फुटाता है, उसका वही काम है। तो इसी प्रकार डायबिटीज हमारे शरीर में अगर हो गया एक बार, कभी आंखों में बॉम्बार्डमेंट, कभी हार्ट में बॉम्बार्डमेंट, कभी गुर्दे में बॉम्बार्डमेंट, कभी ब्रेन में, तो बहुत नुकसान कर लेता है। लेकिन जो इसको बस में रखता है, कंट्रोल करता है, एक आतंकवादी को चारों तरफ से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब फोर्स लगा के अगर घेराव कर ले, बस में रख ले, तो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार डायबिटीज को होलिस्टिक अप्रोच से, जो मैं आपको बताया कि कोई खाली गोली खा लेना कोई इलाज नहीं है, गोली का जितना रोल है, व्यायाम का जितना रोल है, खानपान का जितना रोल है, टेंशन फ्री रहने के लिए मेडिटेशन का जितना रोल है, बहुत सारे एजुकेशन का भी उतना रोल है, तो सब प्रकार की बातों को ध्यान रखते हुए जब डायबिटीज को उपचार किया जाता है, डायबिटीज हमारे बस में रहता है, कुछ हमें कर नहीं पाता है। और क्या बताता हूं, डायबिटीज एक शैडो है, एक परछाई है, जो लाइफ लॉन्ग अंत तक हमारी परछाई पीछा नहीं छोड़ेगा। तो डायबिटीज एक परछाई की तरह है, जो अंत तक ये बीमारी चलती ही रहती है हमारे साथ। और क्या कहता हूं, किसी को कोई अगर डायबिटीज हो गया, कहता हूं भाई आप तो डायबिटीज से शादी कर लिए हो, डायबिटीज को आप तलाक नहीं दे सकते हो, अंत तक इसके साथ समझौता करके रहना ही है पड़ेगा, समझे। तो डायबिटीज क्या चीज है, वास्तव में डायबिटीज इज ए स्वीट लाइफ पार्टनर, एक मीठी सखी है। डायबिटीज से शादी हो गई तो डायबिटीज एक मीठी सखी है, ये आपके जीवन को बहुत ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल, सिंसियर आपको बना देगी। जैसे शादी से पहले अक्सर करके जो लड़के होते हैं आवारा जैसे होते हैं, घर में 1-2 बजे रात को लौटेंगे, माँ अगर कुछ कहती है तो उसको शाउटिंग करेंगे, चुप करा देंगे, कुछ भी खाएंगे, कभी भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन शादी होने के बाद एकदम नट बोल्ट टाइट। 10 बजे के बाद अगर घर में पहुंचे तो बीवी एकदम कान पकड़ के 2 बार 10 बार उठवट करा दे। तो इसलिए सब उनके सब कुछ खान पान चाल चलन सब सीधा हो जाता है। तो इसी प्रकार डायबिटीज से किसी की शादी हो गई, मानो खाना पीना दुनिया की तरह आप नहीं कर सकते हो, आपके खाना पीना जीवन शैली सब कुछ संयमित हो जाती है। तो इसलिए डायबिटीज को बताया एक स्वीट लाइफ पार्टनर, जो आपके जीवन को ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन कर देती है। बट यू कैन नॉट डिवर्स इट, आप इसको डिवर्स नहीं दे सकते हो, तलाक नहीं दे सकते हो, लेकिन इसके साथ समझौता करके जरूर रह सकते हो। तो इसलिए डायबिटीज हो गया तो कोई वास्तव में डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, दिल शिकस्त होने की कोई बात नहीं है। वास्तव में आपका जीवन जो पहले बिल्कुल इनडिसिप्लिन था, कुछ भी करते थे, अभी इसके लिए डायबिटीज हुआ तो अभी आपका जीवन सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप सारी बातें जो आपको यहां दी जाएगी, कैसे सर्वांगीण रीति से डायबिटीज का उपचार होगा, मैं जो आपको विधि बताऊंगा उस अनुसार चलेंगे तो सारा जीवन सुखी रहेंगे, कुछ भी आपको नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं। आप सभी बहुत प्यार से ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, अगर पूछना है तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं। पूछेंगे कोई जवाब? अच्छा जी, जी सुनिए, आज दुनिया में बहुत प्रकार के लेबोरेटरी हैं, लेकिन लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग मेथड है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है वो नहीं पता चलेगा। कोई भी लेबोरेटरी का मेथड स्टैंडर्ड है, उसको ठीक से स्टैंडर्ड करके रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, तो उसका सही रिपोर्ट मिलता है। तो इसलिए कोई भी, आजकल तो फुटपाथ में भी लोग लेबोरेटरी खोल देते हैं, ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, कुछ भी रिपोर्ट पकड़ा लेते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, ये गलत है। ये सब लूटने के लिए, कमाई करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपका लेबोरेटरी स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। जो बड़े हायर सेंटर्स लेबोरेटरी है जिसमें सब प्रकार के पैरामीटर्स को चेक करते रहते हैं, वो अगर हमें सर्टिफाई करते हैं ये लेबोरेटरी ठीक है, तो ऐसे स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में आप अगर टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है, ग्लूकोमीटर में टेस्ट करके कहते हैं आपको बॉर्डरलाइन हो गया है, आपको ये हो गया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से करना चाहिए वो राय प्रॉपर डॉक्टर से आप लेंगे तो आपको बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।